आवाज आ रही है मधुबन के हर एक शय से, आवाज आ रही है दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन के हरे लताए कुटिया के और जाए तो फूल और लताए बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह मंद मंद गाए, ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, आँखों के तारे बाबा, आँखों संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहाँ में बिखरी, दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे। तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है, मधुबन शांति। अव्यक्त मास, प्यारे बाबा की याद में हम सबको डुबाने वाला मास, मधुबन के हर सह से तो बाबा की याद हमें आती ही है, लेकिन हम जहां कहीं भी हैं सुबह से लेके रात तक प्यारे बाबा हमारी आंखों के सामने होते हैं, हमें प्रेरित करते रहते कि मेरे समान बनो। और इस मास में हम बाबा के जो सुंदर प्रेरक प्रसंग हैं, उन प्रेरक प्रसंगों को भागवत कथा की तरह सुन रहे हैं। भक्ति में भी लोग भागवत कथा कितने प्यार से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। हम भी बाबा के बारे में जितना सुने जितना सुने जितना सुने, मन को कितना भाता है, सुकून देता है, प्रेरित करता है कि हमारे पिता ने क्या क्या सहकर कितनी कठिनाई से, लेकिन हंसते हुए बाबा की याद में इस यज्ञ को सींचा है। हमें इस यज्ञ को संपन्न संपूर्ण करना है, ये हमारी सुंदर भावना। तो हमने अब तक सुना बाबा के संस्मरण में कि कैसे हैदराबाद में कितनी सारी विपदाएं, परिस्थितियां, बातें, लेकिन बाबा अचल, अडोल, एक रस, एक की याद में मग्न कि मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूं, ये तो परम सत्ता है, ये तो जगत नियंता है जो ये कार्य करा रहे हैं। पवित्रता की बात मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो गीता में लिखा हुआ है। तो बहुत सहजता से बाबा निश्चिंत रहते हुए उन विघ्नों को पार करते गए और सब बच्चों को भी बहुत हल्का रखा। लेकिन हैदराबाद से बाबा आगे कराची की एक अपने आप को और यज्ञ ले चलने के लिए और आगे की जो यात्रा थी यज्ञ की, उसे बाबा बहुत ही युक्ति से करने के लिए रात्रि में हैदराबाद से कराची चले जाते थे। और वहां जाकर बाबा इस प्रकार से थोड़ी व्यवस्था करने लगे कि कैसे हम सभी जो भी बच्चे हैं, जो भी बांधेलियां हैं, उन सभी को कराची ले जाया जाए। लेकिन ये बात किसी को ज्ञात नहीं थी, बाबा चुपचाप वहां जाते थे और जब बच्चे कहते थे बाबा आप कहाँ चले गए, तो बाबा कराची जाकर वहां से पत्र लिखते थे, बस बच्चे दो दिन में ही मैं वापस आ जाऊंगा। और इस प्रकार बाबा ने वहां रहकर कराची में बोर्डिंग खोलने का पूरा प्रबंध किया। और एक साल तक बाबा ने ये करने के बाद जो बच्चे थे, कुमारियां थी, माताएं थी, उन्हें कराची बुला लिया। लेकिन ओम मंडली ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अभिभावक की स्वीकृति पत्र जिसके पास होगा वही यहाँ आ सकता है, रह सकता है, ताकि जो विघ्न बाधाएं डाल रहे थे लोग, वो विघ्न बाधाएं यज्ञ में ना पड़े। तो सभी स्वीकृति पत्र लेकर हैदराबाद से कराची आ गए
और कराची में फिर जो दिनचर्या हैदराबाद में रहा करती थी वही दिनचर्या यहाँ भी थी कि सभी 3:30 बजे सुबह उठ जाया करते थे। ज्ञान का सुंदर मनन चिंतन होता था, शांत समाधि में सभी बैठा करते थे। लेकिन यहाँ पे भी विघ्नों और बाधाओं ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे हैदराबाद में पिकेटिंग हुई थी, वैसे यहाँ पे भी एनटीओ मंडली वालों ने झंझट करना, विपदाएं डालना, बाधाएं डालना शुरू कर दिया। और जैसे वहां पिकेटिंग हुई थी, सेकेंड पिकेटिंग कराची में भी, ताकि ये लोग डर जाएं, अपने इस कार्य को रोक दें और सभी अपने अपने घर वापस चले जाएं। लेकिन ये कार्य बाबा का कार्य था, रुकने वाला तो था नहीं। सभी लोग थक हार करके अपने अपने कार्य में लग गए, ये सोचकर कि जब बाबा का जो पैसा है खत्म हो जाएगा तो अपने आप सभी ये कार्य बंद हो जाएगा। लेकिन ईश्वर का ये कार्य उन्हें नहीं पता था कि बंद होने के लिए नहीं, लेकिन एक नव युग, नव सृष्टि की स्थापना के लिए है। ओम राधे जी को न्यायालय में भी जाना पड़ा। वहां जा करके जो यहाँ के लिए गलत भ्रांतियां थी, बातें थी कि यहाँ जादू कर दिया जाता है, यहाँ पवित्रता की बात सिखाई जा रही है, घर को फिटाया जा रहा है, लड़ाई झगड़े कराए जा रहे हैं, हर एक बात का ओम राधे ने, मम्मा ने न्यायालय में जा करके स्पष्टीकरण दिया। और जो गलत भ्रम थे, भ्रांतियां थी, उन सभी भ्रांतियों को दूर किया। तो जिस प्रकार की भी बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करते हुए बाबा ने यहाँ सभी बच्चों को बहुत शक्तिशाली बनने की प्रेरणा प्रदान की। और यहाँ फिर आवास की भी व्यवस्था तो करनी थी, तो यहाँ के शांत वातावरण में, कराची में, बाबा ने 5 अच्छे अच्छे बंगलों की व्यवस्था की, जिनका नाम था ओम निवास, बेबी भवन, बॉयज भवन, प्रेम भवन और राधा भवन। जो छोटे बच्चे थे उनके लिए एक अलग बंगला था, जहां पे वो ज्ञान का भी अध्ययन करते थे और साथ ही लौकिक जो शिक्षा है वो भी उनको दी जाती थी। भाइयों के लिए अलग व्यवस्था और बहनों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये जो इतनी सारी व्यवस्था हुई, इतने बड़े रहने की व्यवस्था, बंगलों की व्यवस्था सहज रूप से तो नहीं हो सकती थी, इसके पीछे भी बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बाबा ने निर्मल शांता दादी जी को कहा कि बच्ची बंगला ले आएंगी क्या? तो दादी ने कहा, हाँ हाँ बाबा बिल्कुल ले आएंगे। क्योंकि दादी कहती हैं कि मुझे बाबा के मुख से निकले हुए जो शब्द हैं वो बिल्कुल सिद्ध हुए हैं, ऐसा ही लगता था, और इसीलिए मैं बाबा को भगवान भी कहती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची जाना और जो होम मिनिस्टर है, अल्लाह बख्श, उनके पास जाकर चाबी लेकर ही आना। तो दादी कहती हैं कि मैं उनके पास गई, वो होम मिनिस्टर थे, तो होम मिनिस्टर के पास जाना इतना सहज भी तो नहीं होता है ना। लेकिन देखा उनके सेक्रेटरी ने कि एक बेबी आई हुई है, तो बेबी को कौन रोकेगा। वो गए मिनिस्टर के पास, उन्होंने कहा कि एक बेबी आई है, उनको बुला लिया गया। अब जब दादी उनके पास गई तो जा करके उन्होंने कहा कि मुझे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पार्टी है और हमें बड़े भवन की जरूरत है। बाबा ने दादी को ये बताकर भेजा था कि तुम ये उनके सामने जाना और जाकर के बस खड़ी हो जाना, बाबा टचिंग कराएंगे कि क्या बोलना है। बाबा ये नहीं बताते थे कि क्या बोलना है। ये भी एक सुंदर सी बात है ना, कि हम अपने कार्य के लिए ईश्वर के भरोसे जाएं और बस खड़े हो जाएं। कार्य तो बाबा ही कराने वाले हैं और वो सहज रूप से वो कार्य, बड़ी से बड़ा कार्य भी करा लेते हैं। होम मिनिस्टर के पास जाना, उनके सामने जाकर ये कहना कि हमें भवन की जरूरत है और हम चाबी लेकर ही जाएंगे, कितनी बड़ी सी बात है। लेकिन दादी ने बहुत ही सहज भाव से उनसे कहा कि हमें अपनी पार्टी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मकान की जरूरत है और हम तो चाबी लेके ही जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि अब ये खिलौना तो है नहीं ना इतना बड़ा बड़ा, जो बंगले की बात कर रही हो, जो अभी तुरंत दे दिया जाए। लेकिन फिर भी दादी ने कहा, नहीं, हम तो चाबी लेके ही जाएंगे। और कितने अच्छे शब्द उन्होंने कहा कि आप तो अल्लाह बख्श, खुदा ने आपको पूरी बख्शीश दे दी है, तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है, सब मकान आपके हाथ में है, तो आपके लिए तो खिलौने ही है ना। दादी की ऐसी सुंदर बातों को सुन के वो भी मुस्कुराए और सेक्रेटरी को कहा, जाओ इनको भवन दिखा करके आओ, और जो पसंद हो फिर उसकी व्यवस्था करना। एक भवन पसंद आया, सेक्रेटरी के साथ ये जब गए तो उन्होंने कहा, हमें ये भवन चाहिए, दादी ने कहा। तो उन्होंने, सेक्रेटरी ने कहा कि इस मकान के लिए तो हमें मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा। मिनिस्टर के पास गए तो मिनिस्टर ने ये कहा कि आप अपने बाबा से पहले पूछो। तो दादी ने कहा कि जैसे बाबा हमारे पिता हैं, वैसे आप भी हमारे लिए बाबा के समान ही हैं, और जो बच्चे ने पसंद किया तो पिता थोड़ी मना करते हैं, वो तो वो दिला ही देते हैं। तो मिनिस्टर ने भी कहा कि ये तो छोड़ने वाली नहीं है, इनको चाबी जरूर दो। और इस प्रकार से ये जो कराची में इतने सारे भवन थे जहां पे ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ाना था बाबा को, वो बहुत ही सहज और सरल रूप से प्राप्त हो गए। ये भी ईश्वर की एक सुंदर लीला ही है ना, जो किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और उन आत्माओं को भी टच करके इस कार्य को सहज बनवाया। अब जब सभी भाई बहनें जिन्हें स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गई थी, वो जब यहाँ आ गए कराची में रहने लगे, तब बाबा ने बहुत गहन ज्ञान और योग का अध्ययन कराना उन्हें शुरू करवाया। पहला पाठ जो बाबा ने उन्हें पढ़ाया, जो हमें भी पढ़ना है, उसे अंडरलाइन करना है, वो ये था कि बाबा ने मरजीवा जन्म की पाठ की बात सभी को अंडरलाइन कराई। मरजीवा हो गए, जैसे बाबा ने कहा, लौकिक में कोई शरीर छोड़ देता है तो अपने मित्र संबंधियों, जीवन वृत्तांतों, अन्य सभी बातों से जैसे मुक्त हो जाता है, उसकी कोई स्मृति भी नहीं रहती। ये तुम्हारा मरजीवा जन्म है, अब तुम्हें भी लौकिक लोगों से, लौकिक बातों से, पुरानी बातों से पूरी तरह मुक्त हो जाना है। अब वो चीजें तुम्हें याद भी ना आए, क्योंकि ये तुम्हारा नया मरजीवा जन्म है। यहां तक कि कई एक ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने पूरे परिवार सहित ही अपने आप को समर्पण किया था, तो बाबा उन्हें भी कहते थे कि अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो, अब आप सभी प्रभु वत्स यज्ञ वत्स हो। तो बाबा ने पूरी लौकिकता, जो भी लौकिक स्मृतियां थी, लौकिक बातें थी, लौकिक मित्र संबंधियों के साथ व्यवहार था, उसे पूरी तरह बच्चों को इस स्मृति से मुक्त किया कि ये तुम्हारा नया मरजीवा जन्म है, अब तुम प्रभु वत्स यज्ञ वत्स हो। दूसरी बात जो बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराई यहाँ रहने वाले यज्ञवत्सों को, वो ये थी कि कर्मेंद्रियों का चिंतन और जो आसक्ति है कर्मेंद्रियों से जुड़े हुए, उनका त्याग करो। बाबा कहते कि कर्मेंद्रियों पर तुम्हें काबू पाना है, आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से देखना या मुख द्वारा बुरे बोल बोलना, कानों के द्वारा बुरे वचन सुनना, इन सब से मुक्त हो जाओ। शुद्ध भोजन करो, हर्षित मुख प्रसन्न रहो, ये सारी शिक्षाएं बाबा बहुत कूट कूट कर बच्चों में भरने लगे। दादियां कहती हैं कि बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षाएं दी। जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे हो तुम, अब राजा रानी बनने वाले हो, महाराजा महारानी बनने वाले हो, तो तुम्हारे संस्कार कैसे हों। यही नहीं, निद्रा की जो अवस्था है उसे भी बाबा सत्वगुणी बनाने के लिए कहा करते थे। और कई बार रात को 2 बजे बच्चों के कमरे कमरे में पहुंच जाते थे और दिखाते थे कि देखो बच्चे जो बहुत ही शांत मुद्रा में सोए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो सत्वप्रधान नींद में हैं, और यदि चेहरे में कोई सिकन है तो जैसे वो नींद तमोप्रधान है। तो इसीलिए बाबा ने एक नियम तब बना दिया था, वो नियम आज तक चला आ रहा है और हम सबको उसे अंडरलाइन करना है कि सोने से पहले ईश्वरीय याद में बैठें। याद में रह करके जब हम विश्राम करते हैं तो सचमुच एक सत्व प्रधान निद्रा होती है, और ये बाबा ने उस समय बच्चों को सिखाया और उसे हमें आज भी अपने जीवन में अमल में लाना है। बाबा ने बहुत ही प्यार से बच्चों को ऐसे पाला जैसे कोई राजकुमार और राजकुमारियां हो। यहाँ पे कराची में सभी अपने लौकिक वालों को भूल गए, सभी अपने अनुभवों में ये कहने लगे कि यहाँ जो हमें सुख मिल रहा है, स्वर्ग का सुख भी इसके आगे फीका है। बाबा ने माता पिता शिक्षक बन करके सभी बच्चों को न केवल ज्ञान योग से श्रृंगारा, लेकिन प्रेम के सागर बन के सागर के तट पे घुमाने भी ले जाते थे, पिकनिक भी कराते थे, खेल कूद की भी बाबा ने व्यवस्था कर रखी थी। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता था तो भी उसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बाबा ने की थी। तो सभी के अंतर मन से यही निकलता था कि लौकिक माता पिता भी हमें इतना सुख लाड प्यार नहीं दे सकते, करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये व्यवस्थाएं नहीं मिल सकते जो बाबा ने हमारे लिए की। तो बाबा ने ऐसे सबके अंदर बहुत ही प्यार से ऐसे बीज बो दिए जो लौकिक भूल जाए, क्योंकि लौकिक को तभी भूला जा सकता है, पुरानी चीजों को तभी छोड़ा जा सकता है जब यहाँ बहुत श्रेष्ठ मिलना शुरू हो। बाबा इस साइकोलॉजी को जानते थे ना, तो उन्होंने स्थूल रूप से भी सूक्ष्म रूप से भी बच्चों को इतना दिया कि बच्चे लौकिक से पुरानी दुनिया से मुक्त होते चले गए। यहाँ ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा, और ओम राधे मम्मा को यज्ञ माता सरस्वती का टाइटल प्रदान किया। और यहाँ ही बाबा ने अपने सभी बच्चों को, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती ने सभी को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हुए, योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास कराते हुए विश्व सेवा के लिए तैयार किया। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, गृहस्थी हो, साधु संत हो, सबकी सेवा कैसे करनी है, बाबा ने इसका बीज यहाँ ही सभी बच्चों के अंदर डाला। तो एक ओर गहन योग साधना करके आत्मा को शुद्ध करना, पावन करना, निर्मल करना ये बाबा ने कराया, और दूसरी ओर भविष्य के लिए सभी आत्माओं की सेवा के लिए भी यज्ञवत्सों को तैयार किया कराची में। निर्मल शांता दादी जी अपना अनुभव शेयर करती हैं कि ऑलमाइटी बाबा ने सभी को मम्मा बाबा के द्वारा ड्यूटी दी। सेवा की बारी जब मेरी आई तो बाबा ने लौकिक में कभी भी मुझे कुछ करने नहीं दिया था, लेकिन यहाँ बाबा ने मुझे प्रैक्टिकल में गाड़ी चलाना, टोपियां बनाना, चप्पल बनाना, गाड़ी की सफाई करना, रिपेयरिंग करना गाड़ी की, ये सारी सेवाएं बाबा ने सिखाई भी और मुझसे कराई भी। दादी कहती हैं कि बाबा ने एक बार कहा कि बच्ची मालपुआ बनाना आता है, तो दादी ने कहा बाबा कैसे बनता है पता नहीं, मालपुआ आप सबने भी खाया होगा गुरुवार को, मधुबन में तो विशेष भोग बनता है जो मीठा होता है। तो बाबा ने मुझे बताया कि आटा चीनी मिलाकर तेल में तलने से वो पूड़ा बनता है। फिर बाबा ने कहा, जो बाबा ने बात कही वो बहुत सुंदर अंडरलाइन करने वाली, बच्ची कोई भी सेवा के लिए मन से भी कभी ना नहीं बोलना, मुख से तो ना अलग बात है, मन से भी कभी ना नहीं बोलना, सदैव हाँ जी का पाठ पढ़ते रहना। विश्व का महाराजा बनना है तो सब कुछ आना चाहिए, विश्व का महाराजा बनना है तो सब कुछ आना चाहिए, और कभी ना नहीं, जो भी सेवा मिले। हाँ जी। फिर दादी आगे कहती हैं कि एक बार मैं बाबा के साथ खड़ी हुई थी, बात कर रही थी, तो कोई भाई आए, उनकी चप्पल टूट गई थी, तो उन्होंने टूटी हुई चप्पल दिखाकर कहा कि मुझे चप्पल की जरूरत है, तो दादी ने कहा बाहर मोची को दे दो। तो बाबा ने उसी समय मुझे कहा कि बच्ची तुम्हारे पास मोची जितनी भी अक्ल नहीं है, चली हो विश्व की महारानी बनने। बस बाबा का बोलना था, और दूसरे दिन मैं और दूसरी दो चार बहनें बाजार जाकर चप्पल बनाने का सामान लेकर आए। सबसे पहले बाबा के लिए ही चप्पल बनाए। बाबा क्लास कराने गया तो हमने बाबा की पुरानी चप्पल उठाकर नई चप्पल जो बनाई थी वो रख दे। तो बाबा ने क्लास के बाद चप्पल पहनी तो उन्हें लगा कि चप्पल नई है, अच्छी है, नरम है। पास में मम्मा थी, मम्मा को सारी बात मालूम थी, तो चप्पल पहनकर बाबा बहुत खुश हुए और कहा अच्छा बच्ची, जरूर जाकर तुम विश्व की महारानी बनोगी। तो बाबा का सिखाने का कितना सुंदर तरीका ना। यदि हम हमें कुछ हमने ये कह दिया कि जाओ बाहर मोची के पास, हमें नहीं आता, ये कह के कि ऐसे कैसे विश्व की महारानी बनोगी, और जब वो कार्य करके दिखाया, बिल्कुल तुम विश्व की महारानी बनोगी।
आपको पसंद है।
हर कार्य के लिए बाबा ने सिखाया, सीख भी दी, प्रेरणा भी दी, और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए बल भी भरा। तो बाबा ने शाबाशी दी। फिर दादी कहती हैं हमने यज्ञ के 300 से भी ज्यादा भाई बहनों के लिए चप्पल बनाना शुरू किया, मम्मा के लिए भी चप्पल बनाई। सोचिए दादी, जिनसे बाबा ने कभी कुछ नहीं कराया, एक बाल बनाने वाली होती थी, कोई पानी लाके देने वाली होती थी, कोई हाथ पकड़ के चलाने वाली होती थी, ऐसे राजकुमारियों की तरह जो पली थी बाबा के घर में, नाजों में, उनसे बाबा ने चप्पल भी बनवाई, टोपियां भी बनवाई, गाड़ी की रिपेयरिंग भी करवाई, हर चीज करवाया। क्यों? देह भान टूट जाए। हर चीज कराया इसलिए ताकि जो बाबा ने पीछे कहा विश्व महाराजा बनना है तो हर कार्य आना चाहिए, और ये भी सिखाने के लिए कि ना हम इतने बड़े हैं, हम ये कार्य कैसे करेंगे, ना नहीं। हाँ जी। हृदय पुष्पा दादी जी भी अपना सुंदर अनुभव बाबा के उन्हीं दिनों के, जब बाबा कराची में सभी बच्चों को बहुत प्यार से पाल रहे थे, सिखा रहे थे, तो हृदय पुष्पा दादी जी अपना अनुभव शेयर करती हैं कि मैं एक बड़े हॉल में सो रही थी और प्रातः नींद मेरी नहीं खुली, क्योंकि हमारी जैसे कहा कि 3:30 बजे, चाहे वो हैदराबाद की बात थी चाहे कराची की बात थी, यज्ञ की शुरुआत से ही ये एक सुंदर परंपरा चली आ रही है कि सुबह उठकर बाबा की याद में बैठना। तो दादी कहती मैं हॉल में सो रही थी और प्रातः नींद नहीं खुली, तो मैं सपने में देख रही थी कि बाबा से लाइट की किरणें बड़े जोर से मेरी तरफ आ रही हैं। अचानक आंखें खुली तो देखा कि बाबा और दो तीन बहनें सामने मेरे सामने खड़े हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं शर्मसार हुई और उठकर चली गई, परंतु बाबा की उस कल्याणकारी दृष्टि ने मेरी आंखों से व्यर्थ की नींद चुरा ली और मैं जागती ज्योत बन गई, निद्रा जीत बन गई। बिना बोले ही बच्चों को सिखाना, बिना बोले ही बच्चों के अंदर एक सुंदर संस्कार का बीजारोपण कर देना, योग की शक्ति से ये बाबा ने करके दिखाया। तो दादी कहती हैं तब से मैं रात के पहरे में भी निद्राजीत बनने में सफल रही, और इतने निद्राजीत कि ऐसा लगा कि एक बार मैं पूरी रात को जागकर, दादी कहती मैंने संकल्प लिया कि एक रात मैं सारी रात्रि योग करने का संकल्प लेकर बैठी। रात्रि 2 बजे प्यारे बाबा की ब्राह्मणी आई। बाबा ने उसे टॉर्च देकर भेजा था कि जाओ देखो ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरी भी नींद को फिटा रही है। वह ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंची, फिर मुझे ले गई बाबा के पास। बाबा बोले, बच्ची क्या बात है जो मेरी नींद फिटा रही हो, बोलो बाबा से क्या चाहिए। ऐसे कहते दृष्टि देने लगे। वह दृष्टि मुझे इतना निहाल करती रही जो उस प्यार के सागर में मैं समा गई। प्रेरक सी बात, निद्राजीत बनना, बाबा को सामने देखते और बाबा ने ये बनाया। और दूसरी बात, जब हम याद में बैठते हैं तो वो याद बाबा तक पहुंचती है। इस प्रसंग से हम ये जानते हैं, समझ सकते हैं, हमारी याद बाबा तक पहुंच रही है और उस याद के रिटर्न में बाबा की याद, बाबा की शक्ति। और बाबा ये कहते हैं कि बच्चे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और उनकी नजर से हम निहाल होते चलते हैं। एक सुंदर सा अंत में और अनुभव, एक छोटी सी बच्ची, हृदय पुष्पा दादी जी का है ये अनुभव है कि एक छोटी सी बच्ची जिसे बाबा को याद करने में दिक्कत होती थी, ये हमारे लिए युक्ति है बाबा के सुंदर प्रसंगों को हम जो याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीखते चलें, नोट करते चलें, क्योंकि इन प्रसंगों के माध्यम से बाबा ने जो बच्चों को सिखाया, बच्चों के जीवन को गढ़ा, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे तब थे 1936, 37, 38 में। तो एक छोटी बच्ची को बाबा की याद नहीं रह पाती थी, तो उसको बाबा ने एक सेवा दी थी और वो सेवा बहुत सुंदर थी, आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा। वो सेवा थी हर 5 मिनट में बाबा को आकर पूछना कि बाबा आपको शिव बाबा याद है। तो वो पूछने के लिए बार बार आती थी और बाबा धन्यवाद देते थे उसे। तो मेरे सामने ही 3-4 बार आकर पूछ कर गई, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये छोटी कन्या आपसे ऐसा क्यों पूछती है। तो बाबा ने हंसकर कहा कि बच्ची ये बच्ची शिव बाबा को याद नहीं करती या याद में नहीं रह पाती, तो इसी बहाने उसको याद आ जाती है, इसलिए बाबा ने ये युक्ति बच्ची को बताई है। कितनी अच्छी युक्ति है, हम भी दूसरों को याद दिलाते रहे, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, तो हमें भी बाबा की याद रहेगी और सामने वालों को भी बाबा की याद रहेगी। यज्ञ के आदि से ही ये बात हमेशा ही रही है, हर जगह आपने देखा होगा शिव बाबा याद है, एक छोटी छोटी तख्तियां लगी रहते थे। तो बाबा ने इतनी प्यारी सी युक्ति उस छोटी सी कन्या को दी। ऐसे ब्रह्मा बाबा जो निरंतर याद में रहते थे, ऐसे ब्रह्मा बाबा जिनसे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं, जो महातपस्वी थे, जिनकी याद टूटती ही नहीं थी, जैसे वो कंबाइंड रहा करते थे, ऐसे बाबा भी इतने निरहंकारी होकर के बच्चों के कल्याण के लिए कि उन्हें याद रहे, उन्हें युक्ति बताते कि मुझसे भी पूछा करो कि शिव बाबा याद है बाबा आपको। कितनी सुंदर और प्रेरक सी बात है। तो आज की इन सुंदर प्रेरक बातों को अपने मन में, चिंतन में लाते हुए, जीवन में लाते हुए, ये संकल्प करते हुए कि बाबा आपने जो जो सीख दी उसे हम भी अपने जीवन में लाएंगे, आपके समान बनेंगे, इन्हीं सुंदर संकल्पों के साथ, प्रेरणा के साथ हम बाबा की याद में बैठेंगे और इस सुंदर बाबा के संस्मरण की यात्रा को जारी रखेंगे। ओम शांति।
मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरनी स... सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा पाया साथ सबसे तेरा कर पाया ओ बाबा जीवन हुआ सफल ये मेरा मिल गई खुशियाँ बाबा मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा से पकड़ा तूने हार मन में हुआ प्रकाश फैला घर का उजियारा रोशन हुआ प्रभा ओ, ओ, जब से पकड़ा तूने हार मन में हुआ प्रकाश फैला घर का उजियारा रोशन हुआ प्रभात मधुबन के कण से पूछो साकार रूप अपना दिखा दो तेरी ही राह चले हम हमें अपने पास बुला लो मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए ओ, ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए तुझसे मिलने की